This is an ABP Life podcast.
अभी हाल ही में राजकुमार राव भारत के जो उभरती अभिनेता हैं, इन्होंने ट्वीट कर अथॉरिटीज को इत्तला किया, यानी कि इन्फॉर्म किया कि इनके पैन कार्ड पर लोन लिया गया है और इन्हें पता भी नहीं है। 2019 के अप्रैल की बात की जाए तो जस्ट डायल, आप शायद जानते होंगे, जिसमें अमिताभ साहब आते हैं, आपको बताते हैं कि भैया यहाँ पर आपको सब मिलेगा, तो वही जस्ट डायल ने 10 करोड़ भारतीयों का डेटा गलती से लीक कर दिया था। उसी साल कई और भारतीयों का आधार डेटा लीक हुआ था, और ये उस साल की बात नहीं है। हम आए दिन पढ़ते रहते हैं कि भैया व्हाट्सएप के थ्रू डेटा लीक हो गया, आधार कार्ड के थ्रू हमारा जो डेटा है, बायोमेट्रिक्स है जो बहुत संवेदनशील है, वो लीक हो गया। मतलब 500 रुपए में लोगों का आधार डेटा बिकता हुआ हमको मिलता है व्हाट्सएप ग्रुप्स पर। इससे होता यह है कि अलग अलग कंपनियां जानने लगती हैं कि आप कैसे रह रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसी हिसाब से बड़ी ट्वीक करके आपको ये आए दिन एड्स पेश करती हैं। मगर ज्यादा दिक्कत तब होती है जब ऐसे ही कुछ लोग स्कैम करके आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। एक डिबेट जो पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी बन गई है वो है प्राइवेसी की डिबेट। जैसे जैसे हम इंटरनेट के करीब आते जा रहे हैं, हम उसी में उतना ही उलझते जा रहे हैं। शायद हमारा काम करने का तरीका भी काफी बदल चुका है, और इसी कारण कई पर्सनल डेटा है, जैसे कि नाम, हम कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, हमारे बायोमेट्रिक्स जैसे कि फिंगरप्रिंट्स, आयरिस डिटेक्शन यानी कि आंखों का डिटेक्शन, ये सब यूं ही उन लोगों को मिल रहा है जो हमारे साथ फ्रॉड करते हैं। हमें कई दूसरे क्रिमिनल ऑफेंसेस में भी बिदा सकते हैं। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में, मतलब इसी सोमवार को, क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022 लोकसभा में पारित किया गया। सत्तारूढ़ सरकार का मानना है कि चूंकि अब हम काफी हाईटेक हो गए हैं, और इसीलिए आजकल के हाईटेक मसलों को पुराने नहीं बल्कि नए कानूनों से सुलझाना होगा, वहीं गैर बीजेपी सांसदों का मानना है कि इससे इंसानों की प्राइवेसी पर चोट पहुंच रही है, और आगे चलकर ये कानून अल्पसंख्यकों यानि कि माइनॉरिटीज और हाशिए पर रहने वाले लोग यानि कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उन सभी के लिए ये कानून बहुत बड़ा नासूर बन सकता है, बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। और मुझे लगता है कि भारत जैसे सेंसिटिव देश में, जहां आए दिन लोगों का डेटा लीक होता है, लोग स्कैम का शिकार होते हैं, और जहां पर लोग सरकारों से परेशान हो होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, वहां इस बिल को समझना बहुत जरूरी है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं साहिबा खान और आप सुन रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की पेशकश FYI यानी कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो भाई आज की इन्फॉर्मेशन है बड़ी ही संवेदनशील। सोमवार को लोकसभा में क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022 को वॉइस नोट से पारित किया गया। ये बिल पुलिस और जेल के अधिकारियों को अनुमति देता है कि वो मुजरिमों के फिजिकल और बायोलॉजिकल नमूने जैसे कि रेटिना स्कैन, फिंगरप्रिंट्स, आयरिस स्कैन इत्यादि, इन्हें जमा करके उन्हें एनालाइज करें। अमित शाह ने सदन में कहा था कि हमारे यहाँ NCRB का जो डेटा आप उठाएंगे तो पता चलेगा कि लोग अपने जुर्मों में कितने कम पकड़े जाते हैं, मतलब कॉन्विक्शन रेट जो है हमारा वो बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 50 लोगों ने चोरी की है तो 50 में से शायद से 5 या 6 लोग पकड़े जा रहे हैं, तो जो 5 और 6 लोगों का जो रेट है उसको कहते हैं कॉन्विक्शन रेट। तो आगे उन्होंने बोला कि जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो फर्स्ट वर्ल्ड देश हैं, जो बहुत हाईटेक हैं, वहां पर दोषी करार करना है, तो ताकि ज्यादा लोग दोषी करार किए जा सकें, इसलिए हमें भी समय के साथ साथ कानून में बदलाव लाने होंगे। हालांकि विपक्ष ने इस पर कई सवाल उठाए हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अगर इस कानून का उद्देश्य ज्यादा लोगों को दोषी करार ना है, तब तो इसे कैसे भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं? खैर, मैं आपको पहले पूरा बिल बता देती हूँ। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स अजय मिश्रा साहब लाए हैं ये बिल, जिसका नाम है द क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022। इसके अंतर्गत मुजरिमों की कुछ श्रेणियां होंगी, कैटेगरीज होंगी, जिन्हें अपना बायोलॉजिकल और पर्सनल डेटा जमा कराना होगा और जिनको एनालाइज किया जा सकेगा, किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा, स्टेट के द्वारा। इस बिल पर सर्वेलेंस यानी कि निगरानी और गोपनीयता का उल्लंघन का आरोप भी लग रहा है। बिल के सेक्शन 2(1)(b) कहता है कि अधिकारियों को फिंगरप्रिंट्स, हथेलियों के प्रिंट्स, पैरों के फुटप्रिंट्स, फोटो, आंखों में आयरिस और रेटिना स्कैन, ये सब नमूने लेने का राइट होगा। सिग्नेचर्स और हैंडराइटिंग इत्यादि को भी सैंपल किया जाएगा। अब ये कानून 1920 में आया आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट को रिप्लेस करने वाला कानून है दोस्तों। तो 1920 के कानून में कहा गया था कि आप उन्हीं के नमूने लें जिन्हें आरोपी ठहराया जा चुका हो, यानी कि जो कॉन्विक्ट्स हों और जो जेल में अपनी सजा काट रहे हों। आपको बताती चलूं कि 1920 वाले कानून में केवल फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स लेने की ही इजाजत दी गई थी। तो अब ये कानून किन किन पर अप्लाई होता है? 1920 से कंपेयर करें तो ये बिल अब कई लोगों को अपने अंदर लपेट सकता है। लोगों की अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं जिन पर ये कानून काम करेगा। पहला, किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में जिसे दोषी ठहराया गया हो। दूसरा, उन लोगों पर जिन्हें अथॉरिटी से वार्निंग मिली हो, ही होना चाहिए। कहले कि ये उन लोगों के लिए है जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स या सस्पेक्टेड ऑफेंडर्स हैं। मतलब जरूरी नहीं इन्होंने वो क्राइम किया हो, मगर अगर पुलिस को लगता है कि वो क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं तो इनके सैंपल्स लिए जाएंगे। अब आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन क्रिमिनल प्रवृत्ति का है भाई? मतलब हीरे बेचने वाला नीरव मोदी भी क्रिमिनल हो सकता है और गली में साइकिल चोरी करने वाला बच्चा भी, प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थी भी क्रिमिनल हो सकते हैं और दाऊद इब्राहिम भी, समझ रहे हैं? तो अब कौन डिफाइन करेगा कि भैया इनकी प्रवृत्ति जो है वो क्रिमिनल है और इनकी नहीं है? और तीसरा, ये उन लोगों पर लागू होता है जो किसी भी प्रिवेंशन लॉ के तहत गिरफ्तार हुए हों, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या फिर पब्लिक सेफ्टी एक्ट। बिल में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि इंसान अपना सैंपल देने के लिए मना भी कर सकते हैं, बशर्ते आपने औरतों और बच्चों से रिलेटेड कोई क्राइम ना किया हो और या फिर आपकी जेल की सजा 7 साल से ज्यादा की ना हो। बिल का कहना है कि अगर मुजरिम बाद में बरी हो जाता है तो उसके रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया जाएगा। हाँ, मगर अगर जज ने कह दिया कि इनके रिकॉर्ड्स डिलीट नहीं करेंगे तो 75 साल तक उनके रिकॉर्ड्स डेटाबेस में ही रहेंगे। इस सेंसिटिव डेटा को स्टोर कैसे किया जाएगा? तो जी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB संवेदनशील डेटा को स्टोर करने का जिम्मा उठाएगा। चूंकि पुलिस राज्यों के तहत काम करती है, ना कि केंद्र के सिवाय यूनियन टेरिटरीज के, देखना होगा कि क्या राज्य सरकारें NCRB से अपने राज्य का डेटा शेयर करेंगी भी या नहीं। किसी के भी सैंपल की टाइमलाइन 75 साल होगी, 75 साल के बाद वो रिकॉर्ड नष्ट हो जाएगा। हालांकि सरकार का कहना है कि इस पर अभी और चर्चा करना बाकी है, तो भैया अभी क्लैरिटी नहीं है। अब जानते हैं कि क्या दिक्कतें हैं बिल की। सबसे पहले लैक ऑफ क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता की कमी है। बिल कहता है कि दिस बिल इज फॉर द कॉन्विक्ट्स एंड अदर पर्सन, यानी कि बिल है दोषी करार किए गए लोगों व अन्य लोगों के लिए। अब दोषी करार किए गए तो हम समझ रहे हैं, मगर ये अन्य लोग क्या हैं? क्या है इनकी कैटेगरी? ये अभी साफ तौर पर सामने नहीं आया है। हो सकता है कल को पुलिस किन लोगों को इस कानून के तहत अपने सैंपल्स मांगने को कहने लगे। आए दिन भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, आए दिन लिंचिंग से लेकर मर्डर हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, और कई बार हम उन लोगों को अंदर कर देते हैं जिनका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं हो। तो इतने संवेदनशील देश में इस तरीके का कानून किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर मिसयूज किया जा सकता है, ये तो मुझे आपको बताने की शायद जरूरत ही नहीं है। अब बिल ये भी कहता है कि जिन्हें वार्निंग मिली है अच्छा व्यवहार रखने की, उन पर ये लागू होता है। उन्हें भी कहा जा सकता है कि वो अपने सैंपल्स दे, लेकिन ये तो एक बहुत ही बड़ी रेंज हो गई ना। अब वो लोग जिन्होंने क्राइम ही नहीं किया हो वो भी इसके घेरे में आ गए, उनके बायोमेट्रिक्स भी डेटाबेस में चले गए। आपको बताती चलूं कि रेशियल या कम्युनल प्रोफाइलिंग होने का खतरा भी हो सकता है। आप एक संप्रदाय के लोगों के ही सैंपल्स लें, अब आपको पता है कि वो लोग कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और देश में पुलिस की छवि भी बहुत अच्छी है नहीं, काफी आपत्तिजनक है। तो अगर कभी किसी को फ्रेम करना हुआ तो ये जानकारी अधिकारियों को बेतहाशा पावर दे सकती है। एक बहुत जरूरी उल्लंघन जो इस कानून से हो सकता है वो है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन। विपक्ष का कहना है कि संविधान के मुताबिक आप ऐसा कोई भी कानून नहीं ला सकते हैं जिससे किसी के भी मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, और प्राइवेसी तो मूल अधिकार है। आर्टिकल 23 के मुताबिक आप स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, यानी कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये कानून लोगों से यही करा रहा है, वो खुद के खिलाफ जाकर ही सैंपल्स देंगे। जब तक आप दोषी करार नहीं किए गए हैं, यानी कि आपको कन्विक्ट नहीं किया गया है, तब तक आप अपने ही खिलाफ ना गवाही देंगे ना ऐसा कुछ करेंगे ताकि आपको दोषी करार किया जाए। आप खुद को निर्दोष साबित करेंगे, दोषी नहीं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जरूर आयरिस स्कैन और फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करें, मगर वेलफेयर स्कीम के लिए, जैसे कि आधार। ये नहीं कि मुजरिमों या फिर वो लोग जिन्हें आपको लगता है जो दोषी होंगे उनके फिंगरप्रिंट्स और आयरिस स्कैन आप जमा करते फिरें। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ये बिल राज्यसभा में भी पारित किया जाएगा। विपक्ष ने तो कहा है कि अभी इस बिल को और बेहतर करने की जरूरत है, इस पर कमेटी बैठाने की जरूरत है, मगर क्या इस बिल पर कमेटी बैठेगी या ये यूं ही पारित कर दिया जाएगा और फिर बनेगा एक कानून? सोचिए और हमें बताइए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर ट्वीट कर। आपको क्या लगता है कितना काम करेगा ये बिल अगर बन गया कानून? हमसे साझा करें कि क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। तो फिलहाल ये था क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ 2022 का बिल जो लोकसभा में पेश किया गया है, पारित हो चुका है। मैंने अभी आपको इसके सभी तर्क वितर्क भी समझाए हैं। उम्मीद है आपको ये संवेदनशील बिल समझ आया होगा। आगे FII में मिलेंगे कुछ और जरूरी चीजें डिस्कस करने। मैं हूँ साहिबा खान, लूंगी आपसे विदा। पॉडकास्ट की साउंड डिजाइन की है ललित ने और आप सभी सुन रहे थे एबीपी लाइव पॉडकास्ट की पेशकश FII यानी कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार।
फिजिकल डिस्टेंसिंग के टाइम पे न्यूज डिस्टेंसिंग मत करो, डाउनलोड करो एबीपी लाइव ऐप और जानते रहो।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।